18 भक्ति काव्य और मानुष सत्य। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन मध्य युग की एक महान सांस्कृतिक घटना है। भक्ति काव्य इस आंदोलन की उतनी ही महत्वपूर्ण फलश्रुति है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की यह विशिष्ट देन भक्ति के दो रूपों को लेकर सामने आई, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के तहत श्रेष्ठ के नियंता के रूप में एक ईश्वर की बात की गई जो सर्वव्याप्त निर्गुण निराकार और निरुपाधि है। सगुण भक्ति के अंतर्गत हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुरूप उसके अवतारी रूप की प्रतिष्ठा हुई, उसके प्रधानतः राम और कृष्ण के रूप में उपासना का विषय बनाया गया। भक्ति की इन दोनों धाराओं के माध्यम से हमें न केवल संतों और भक्तों की एक शानदार परंपरा मिली, भक्ति के आवरण में उनकी उस विशेष रचनाशीलता से भी हमारा साक्षात्कार हुआ जिसकी अंतर्वस्तु उपासनागत और विचारगत भिन्नताओं के बावजूद अपने बुनियादी रूप में परस्पर बहुत भिन्न नहीं है। भक्ति आंदोलन और भक्ति की निर्गुण और सगुण धाराओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के अपने स्वरूप और चरित्र को लेकर भले ही विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुरूप भिन्न निष्कर्ष दिए हों, जिस बुनियादी तथ्य को लेकर उनमें कहीं भी किसी भी स्तर पर मतभेद नहीं है वह यह कि समूचे भक्ति काव्य में साधारण जनता की अपनी आकांक्षाएं और उनके अपने दुख दर्द ही प्रतिबिंबित हुए हैं। भक्ति का यह आंदोलन उत्तर भारत में लगभग 300 सालों तक गतिशील रहा और इस समूचे दौर में भक्ति की इस विराट तस्वीनी में करोड़ों करोड़ जन साधारण जनों ने अवगाहन करते हुए न केवल अपनी आध्यात्मिक तृषा को शांत किया, अपने आतप तप्त मन और प्राणों को सींचा और शीतल किया। धर्म और भक्ति पर केंद्रित होते हुए भी भक्ति आंदोलन अपने आश्रयों में बहुआयामी रहा है, उसके अपने निस्तार्थ भी इसी नाते बहुआयामी है और भक्ति धर्म और आध्यात्म के अलावा जीवन की दीगर तमाम सच्चाइयों को भी खोलते हुए उद्घाटित करते हैं। खास तौर से भक्ति आंदोलन के जो सामायिक निस्तार्थ हैं, उनका संबंध हमारे अब तक के यहाँ मध्य युग में भक्ति आंदोलन के उदय तक के समाज इतिहास की कुछ ऐसी सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करते हैं जिनसे आंख मिलाना या जिनकी आंख को सह पाना हर एक के बूते की बात नहीं है। संप्रति हमारा आशय भक्ति आंदोलन या भक्ति काव्य को उसकी समग्रता में अथवा उसके सामायिक निस्तार्थों के मद्देनजर विश्लेषित करने का नहीं है। हमारा इरादा यहाँ धार्मिक सामायिक सोच के अंतर के बावजूद भक्ति काव्य की इस सामान्य भावभूम तक अपने को केंद्रित रखना है जो भिन्नताओं और विविधताओं के बीच भी भक्ति की कविता को कुछ ऐसे अंतर सूत्रों से जोड़ रखती है जो मनुष्य मात्र की संवेदनाओं के सूत्र हैं और जिनके नाते भक्ति की यह कविता मध्य युग के समूचे सांस्कृतिक परिदृश्य में अपनी खास पहचान रखती है और मध्य युग का अतिक्रमण करते हुए हमारे अपने समय में भी अपनी अर्थवत्ता साबित करती है।